राम। श्रीमद् भगवत गीता पाठ दूसरा अध्याय श्लोक 1 से 10। दूसरा अध्याय श्लोक 1 से 10।
Thank you. प्रणिधाय गायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं हिदेवपुत्रस् सखेव सखो प्रियप्रियाधसि देवसोऽहं अमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
राम श्रीमद् भगवद गीता पाठ दूसरा अध्याय श्लोक 1 से 10। दूसरा अध्याय श्लोक 1 से 10।
वसुदेव सुतं देवं कंस चानोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अयोध्याय। संजय उवाच तां तथा कृपया वेष्ट माश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीदान्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ज्य मकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यौमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्वल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहवरिसूदन गुरुना त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीघ्नान् न चैताद्विद्वा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न दिदिवशाम सेवस्थितः प्रमुखे धातुराशा कार्वण्यदोषो बहदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यस्येयस्यान्विष्टितं रुदितान्वे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमोच्छोषणमेन्द्रियाणां प्रवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामभिताधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमोक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप नायोऽस्य इति गोविन्द मोक्त्वा तूष्णीं बभूव तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वच तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वच वसुदेवसुतं देवं कंसचानोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु
सबसे बढ़कर भगवत गीता की जो दृष्टि है वो विलक्षण है। होना ही चाहिए, भगवान की साक्षात वाणी है। तुझे कितने अच्छे महात्मा हो, संत हो, परंतु वो संत बने हुए हैं, वो परमात्मा तो वो प्राप्त हो गए हैं, इस वास्ते उनका कहना सब ठीक है, परंतु भगवान तो कभी अप्राप्त थे ही नहीं। वो स्वतः ही महान है, दूसरे साधन करके बड़े बनते हैं, परमात्मा बड़े बने हुए नहीं है, वो सर्वोपरि है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले सबके आदि और अंत और मध्य शक्ति वो ही है परमात्मा ही। उनका जो सिद्धांत है वो बहुत विलक्षण है। मन के लगाने की बात आती है, वे मन को एकाग्र करो और परमात्मा में लगाओ, तो लगने की न लगने की दो बात होती है, तब नहीं बात होती है। भगवान में लगे और भगवान में न लगे, तो और किसी में ही लगे तब न दो बात होती है। तो ये दो बात कब तक रहेगी, कि जब तक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरे किसी को हम सत्ता मानेंगे तब होगा ना। जब एक ही सत्ता है, आत्म तत्व ही एक है, सत्ता एक ही है, मन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उनका असंयम कहाँ होगा, कैसे होगा, संभव नहीं है। ही वासुदेव सर्वम, तो ये सिद्धांत सर्वोपरि मालूम होता है। जितने सिद्धांत देखने में, सुनने में, मानने में, समझने में, पढ़ने में आए हैं, उन सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत यही बात मालूम देती। भागवत है, विष्णु पुराण आदि में जो महाराज वेद व्यास वाणी है उसमें यही बात आई है। आम एव न मत्तो अन्यत् मत्ता परतरम किंचित नान्यद् अस्ति इति भावेन, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं और। आम एवं भगवान कहते मैं हूं। आम आदेश मध्यंच भूतानाम अंत में, पहले भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत में भी मैं हूं, और आगे ही पहले मैं ही था, अंत में शेष मैं ही रहूंगा। तो परमात्मा ही है सब। इसकी प्राप्ति के लिए खास बात है, सबके साथ आदर का बर्ताव करें। शरीर से भी किसी का अनिष्ट न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी की हानि न हो, सबकी सेवा बने, शरीर से भी ऐसा करें, और वाणी से भी मीठा बोले, प्यार बोले, आदर करें, प्रशंसा करें, और मन से भी सबकी सेवा चाहे, किसी का कभी भी अनिष्ट न करें। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वो भलाई करते हैं, ये अपनी तरफ से होता रहे, तो उस तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाए। सीधी सरल बात है, बर्ताव भी बढ़िया होगा, चित्त में भी शांति मिलेगी, और तत्व ज्ञान भी होगा, परम तत्व की प्राप्ति होगी, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। तो सबके साथ आदर का, प्रेम का बर्ताव, जैसे शरीर के साथ हमारा अपनेपन का भाव है, कार्य अलग अलग है, पैरों का अलग है, हाथों का अलग है, इंद्रियों का अलग अलग है, मन बुद्धि का अलग अलग है, परंतु अलग अलग होते हुए भी व्यवहार अलग अलग है, परंतु सबके सबके साथ आत्मीयता अपनापन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं भी पैर पे कांटा लग जाए तो कोई अर्ज नहीं है, हाथ में नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब अंगों में आराम पहुंचे, किसी अंग को कभी कष्ट न हो, स्वाभाविक स्वाभाविक सिद्ध। तो ऐसा भाव किस प्रति रहे, गीता ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जैसे शरीर के लिए अपनापन बरोबर है, किसी अंग में भी पीड़ा नहीं सुहाती, सब अंगों में ही पीड़ा रहित होना, सुख रहना अच्छा लगता है, ऐसा मात्र संसार के साथ आराम का, सबके सुख का, आदर का, प्रशंसा का, आराम का भाव रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को रोग न हो, सबके आनंद मंगल भद्र आनंद ज्ञान होता रहे, किसी को कभी किंचित मद भी कष्ट न हो। रामायण में जैसे आया, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वो भलाई करता है सबके साथ। तो ये साधु है, ये साधु स्वभाव है, स्वभाव साधु है ये, वो संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, किसी का भी बुरा नहीं है। ये बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है। हम लोगों में प्रायः जची हुई है कि भलाई करने से होती है, बुराई छोड़े भलाई करे तो भलाई होगी, ये बात बैठी हुई है। बात विलक्षण है, बुराई सर्वथा छोड़ दो भलाई स्वतः होगी, और स्वतः होगी वही नित्य होगी। बनी हुई बनाई हुई की हुई चीज स्थिर नहीं रहती, उत्पत्ति वाली वस्तु नाशवान होती है। तो की हुई होगी भलाई तो वो वास्तव में ठहरेगी नहीं, की हुई तो है बुराई। भलाई स्वतः है, भलाई अच्छी है, देवी संपत्ति स्वतः है। अपने मानते आसुर संपत्ति स्वतः है, देवी संपत्ति लाने से होगी नहीं, आसु संपत्ति हटाने से देवी संपत्ति भी स्वतः प्रकट होगी। देव नाम परमात्मा का है तो परमात्मा नित्य है, तो परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन है भी नित्य हैं। इमं विवशुते योगं प्रयोक्तवान अहम अभ्यम, ये योग अभ्य क्या है, ये नित्य रहने वाला है, विनाशी नहीं है, अविनाशी है। तो सद्गुण सदाचार है, इसमें सत शब्द लगता है, सत शब्द नित्य का वाचक है। और आसुरी संपत्ति असुरों की प्राणों से जो प्राण धारण करते हैं, प्राण छोड़ देते हैं, ये प्राणों को लेकर प्राण पुरुष पराण वो आसुरी संपत्ति है, तो ये नित्य नहीं है। इसका त्याग करने पर देवी संपत्ति सफल असफल सिद्ध है। तो जीवों का भला करना है ये स्वाभाविक है, बुरा करना है नुकसान करना है ये अस्वाभाविक है, ये उद्योग साध्य कृति साध्य है। अपने लोगों में प्राय बैठी हुई बात है कि ये बुराई संसार की तो है स्वतः, अब उसको भला करके अच्छा करेंगे तब अच्छा होगा, अच्छा करने से होगा। प्रत्यक्ष ये बात कहते हैं, वो दिखती है कि हम आपका कुछ भला करें तब तो आपकी हमने सेवा की, आपका बुरा नहीं करें तो क्या सेवा की आपकी, हमें क्या फायदा। तो दिखने में ऐसा दिखता है, पर बुराई न करना कोई भलाई से कम नहीं है। बुराई का न करना, किसी का अहित न करना, किसी को कष्ट न देना, किसी की हानि न करना, बहुत भलाई की जड़ है ये। इस वास्ते दुराचारों का त्याग करना चाहिए। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है, अंतर नहीं पड़ता, त्याग करते ही शांति मिलेगी, स्वतः स्वाभाविक, वो शांति स्वाभाविक है। इस बार से किसी का बुरा नहीं करेंगे। हमने पढ़ा है पुस्तकों में कि विश्व मात्र की सेवा करना चाहते हो, मात्र प्राणियों की, त्रिलोकी की, चौदह भुवन की सेवा करना चाहते हो तो ना किसी को बुरा समझो, ना किसी की बुराई देखो, और ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी का बुरा चिंतन करो, ना बुराई करो, तो संसार की सेवा शुरू हो जाएगी, संसार की सेवा शुरू हो जाएगी। कितनी विचित्र बात है, सेवा करने में परिश्रम भी पड़ता है, खर्चा भी लगता है, और बुराई न करने से अपना स्वभाव सुधरता है, मेहनत पड़ती है, मेरी सेवा बड़ी भारी हो जाती है। कितनी विचित्र बात है, कितनी अच्छी बात है। झूठ कपट बेईमानी ये त्याग कर रहे हैं, साधुता स्वतः आ जाएगी। साधुता लाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलेंगे, अहित नहीं चाहेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य में तत्परता से लगे रहेंगे, तो स्वतः स्वाभाविक सद्गुण हो जाएगा। परमात्म तत्व जो सत है वो नित्य है, और जो संसार ये अनित्य है, निर्विकारी है, वो निर्विकार है। तो विकार किए हुए विकार होते हैं, निर्विकारता स्वतः सिद्ध है। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की शीतलता स्वभाव है, ठंडा सा हो जाता है, गर्म संयोग से होता है, करने से होता है, संबंध से होता है, स्वतः गर्म नहीं है। ऐसे शांति स्वतः है, अशांति पैदा होती है, दुख पैदा होता है, सुख स्वतः है। इस वास्ते मुक्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्ति पांडव, जानने के बाद में फिर ऐसा मोह नहीं होगा। खूब मोहक शादी है और शांत है, और ज्ञान अनादि है और अनंत है, वो सद्वस्तु है, वो स्वाभाविक है। अपने लोगों ने मान रखा है कि संसार स्वाभाविक है, ये स्वतः ही प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक है, वो कृत्रिम है, करेंगे उद्योग करेंगे तब होगा। वो स्वाभाविक परमात्मा है, स्वाभाविक संसार नहीं है। संसार का तो स्वाभाविक विनाश है, नाशवान है, इसको नाश इसका कुछ है ही नहीं, इसकी सत्ता सिद्ध रहती ही नहीं, इस नित्य निरंतर परिवर्तित होता जाता है, इसका परिवर्तन नित्य होता है। इसके परिवर्तन में कभी भी शांति होती ही नहीं, कभी भी परिवर्तन न हो ऐसा स्वर्ग में, प्रलय में, महाप्रलय में, महासर्ग में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसकी क्रिया नाश की तरफ जाने की क्रिया स्वतः हो रही है, स्वाभाविक हो रही है। अरे वो परमात्मा तत्व तो है जो का जो है, उसमें कोई विकृति आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं। इस बात से पायो परम विश्राम, वो परम विश्राम है। संसार का काम करते हुए थकते तो विश्राम ले लो भाई, थोड़ा विश्राम ले लो, वो विश्राम है, वो परम विश्राम है। प्रत्यक्ष बात है, विश्राम से कार्य करने की शक्ति आती है। दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो शक्ति आती है। तो शक्ति संचय स्वतः होती है, और खर्च करने से खर्च हो जाती है, थकावट आ जाती है, और ताजगी स्वतः आती है। बोलते 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 जाओ, बोलते जाओ, अंत में बोलना बंद हो जाएगा, फिर चुपचाप अपने बोलने की शक्ति आ जाएगी। चलते 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 ही चले जाओ, अंत में गिर पड़ोगे, अरे पड़े पड़े शक्ति आ जाएगी। जो नित्य शक्ति है वो सदा सबको स्वतः प्राप्त है। परमात्मा तत्व स्वतः सबको प्राप्त है, स्वाभाविक। दुर्गुण दुराचारों से, भोग की सुख की इच्छा से, संग्रह की इच्छा से उस परमात्मा तत्व को ढक दिया आपने, उसका अनुभव नहीं होने देते। अगर इन इच्छाओं का त्याग कर दे, बुराई त्याग कर दे, तो बुराई स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही, क्योंकि स्वाभाविक है वो। सत का अभाव नहीं होता, असत का अभाव नहीं होता। ये श्लोक जो है, ना सत्व विद्यते भाव ना भाव विद्य पढ़ाई में लिखो श्लोक है। असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, हरदम नाश नाश हो रहा है। असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, तो वो रहेगा ही है, जो का जो है वो है जो कहते हैं, उसको प्राप्त करना है। इस बात से कहते हैं, खोया कैसो बावरे, पाया कैसो कूर, पाया कैसो बावरे, खोया कैसो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का जो भरपूर तो है, ऐसा ऐसा ही। तभी तो जिसको प्राप्त मुंह नहीं होगा, फिर बात जर्मन नहीं होगा, आफत में नहीं जाओगे। और ये आफत तो मिटने वाली, ठहरती नहीं है, ये आफत टिकती नहीं, जिस आफत तो चाहते वो रहती है, नहीं रह सकती नहीं, शांति कभी मिट सकती नहीं। ये आपद में भी शांति पड़ी है स्वतः, असत में भी सत शुद्ध निरंतर रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। स्वाभाविकता स्वतः सिद्ध है। अपने लोग भी कृत्रिम जानते हैं, करने से होगा। बालक हो कोई, उसको नश हो तो स्वाभाविक सत्यता उसमें सुध जाएगी, है जैसी बात सत्य होगी। तो सत्य भाषण स्वतः सिद्ध है, असत्य भाषण कृत्रिम है। इस वास्ते असत्य जितना के संसार सब कृत्रिम है, बनावटी है, रहने वाला नहीं है, नष्ट हो रहा है। परमात्मा तो है, जो कहते हैं विद्यमान है। इस वास्ते बहुत बारी बात कही है कि भाई परमात्मा उद्योग करने से वो करने से मिलेगा नहीं, संसार की प्राप्ति का साधन और परमात्मा प्राप्ति का साधन है, उनके एक समान नहीं है, प्राय एक समान मान रखा है। ग्रंथों में, शिक्षा में, व्याख्यान में, कथा में ये बात आती है प्राय कि अच्छा करने से होगा, ये बात शिक्षा हो रही है। ये बात ये नहीं है, बुराई छोड़नी है, असत का त्याग करना है, सत्य को लाना नहीं है। परंतु प्रवाह ऐसा बना हुआ है, ज्यादा प्रवाह ऐसा बना हुआ है कि उसकी प्राप्ति भी करने से होगी। जैसे संसार की वस्तु प्राप्त करने से होती है, ऐसे ही उसकी प्राप्ति भी ऐसे ही होगी। वैसे भी होती है, अभाव नहीं है। देखो ये मार्मिक बात है। पृथ्वी कहते ये गोल है, तो गोल है तो किस तरह से जाओ वही छोड़ पहुंच जाएगा आदमी। जहां कहे वहां ही उसका मध्य भाग है, गोल वस्तु में मध्य भाग कौन सा, जहां कोई वही मध्य भाग, सब मध्य भाग है वो। और आरंभ भी वहां से ही है, अंत भी वहां भी है, मध्य भी वहीं है। बताओ सब बैठता है ना, गोल हो सी है, आरंभ कहीं से वहां से आरंभ है, और वही अंत है, और वही मध्य है। कहावत आती है देवदत्त से एक पुत्र, देवदत्त का एक पुत्र है, सहैव ज्येष्ठ सहैव कनिष्ठ, बड़ा भी वही है छोटा भी वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे छोटा कोई नहीं है। तो बेटा बड़ा छोटा कौन, वो छोटा है, वही बड़ा है, वही है। इस तरह से वो तत्व वही है, इधर उधर किस तरह से वही होगा। तो उसके उद्देश्य करोगे तो उसी की प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो उसी की प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति तो होगी। परंतु विषेध जो असत का निषेध है ये बहुत नजदीक पड़ता है, सत्य की स्वतः प्राप्ति होगी। इस बात से सावधानी से असत का त्याग करना है, फिर स्वतः स्वभाव की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वो संसार स्वाभाविक दिखता है, परमात्मा की प्राप्ति तो कृत्रिम दिखती है, उद्योग साध दिखती है, अरे संसार तो स्वतः है। अरे स्वतः तो परमात्मा है, संसार स्वतः नहीं है, पर्दा है ये। स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत्र कीरांगिरंति, स्वतः प्रमाण परत प्रमाण कहते हैं ना। तो परमात्मा स्वतः प्रमाण है, संसार परत प्रमाण स्वतः नहीं है। द्वादश नीलादर्श निरुद्धा अवैतम मंडल पंडित हो, तो पंडित है वो, पंडित का घर है मंडल मिश्र का। तो बात क्या, स्वतः शास्त्र है, ये जो तत्व है परमात्मा वो स्वतः प्रमाण है। दूसरी बात, प्रमाण से सिद्ध करनी पड़ती है, स्वतः प्रमाण है उसे प्रमाण सिद्ध होते हैं, प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता है, उससे प्रमाण सिद्ध होते हैं। दिखता उल्टा, प्रमाण सब उससे प्रमाणित होता है, उसे सजीव होते हैं। प्रमाण से उसको क्या करोगे, न तद्भाषित है सूर्यो न शशांको न पाओगे, ये प्रकाशित नहीं करते। क्यों, कि यद आदित्य गतन तेज, वो उसका मामकम है वो, ये चंद्रमसी से अग्नव तत्तेजो विद्धि मामकम, तो परमात्मा तेज है, ये तेजस्वी होने वाले, ये तेज परमात्मा को कैसे प्रकाश करेंगे। इनको प्रकाश तो परमात्मा से मिला है, इस बार सबको शक्ति परमात्मा से मिलती है, और शक्तियां परमात्मा को क्या प्रकाश करेगी। वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। बनावटी इसका त्याग करो, असली चीज मिल जाएगी। इस वास्ते परमात्मा तत्व है तो है उसकी प्राप्ति करना है, और जो निवृत्त हुआ है उसकी निवृत्ति करना है। तो निवृत्ति से आप अपने को हटा लो, स्वतः सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको निवृत्त करना है उसकी निवृत्ति हो रही है, जिसको प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति है। थोड़ा सा समझ रही है। नारायण 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 बोलो, कुछ संकोच बोलो।
त्याग की सत्ता तो रह जाती है, त्याग की सत्ता तो रहती है। त्यागी तो रह जाता है ना, त्यागी तो रह जाता है त्याग करके।
अगर त्यागी रह जाएगा, त्यागी नहीं रहेगा, त्याग ही रहेगा, त्यागी रहेगा ही नहीं। त्यागी जब तक है तब तक त्याग नहीं है। त्यागी बैठा त्याग कहाँ हुआ? त्यागी होने पर त्यागी नहीं रहेगा। त्यागी तो अभिमानी है त्याग का, त्याग का अभिमान कैसे रहेगा? त्याग का अभिमान है तो त्याग कहाँ है? असली त्याग होने पर अभिमान नहीं रहेगा।
महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा कि बुराई जो बुराई जितनी है वो कृत्रिम है, तो बाल्यावस्था से जब युवावस्था में व्यक्ति आता है तो स्वतः जो विकारों का जो प्रादुर्भाव होता है ये भी कृत्रिम है क्या?
बिल्कुल कृत्रिम है, बिल्कुल
स्वाभाविक।
अरे प्रादुर्भाव तो खुद कहते हो, पैदा होता है, आप खुद कह रहे हो।
स्वाभाविक होता है, उसमें कोई संघ से नहीं होता
ना। संघ होता है, संघ सही होता है। ऋषि संघ की कथा नहीं सुनी? ऋषि संघ, ऋषि संघ ऋषि थे, ब्राह्मण ब्रह्मचारी। तो यज्ञ किया था दशरथ जी महाराज का, उसको पता ही नहीं स्त्री पुरुष क्या होता है। वे भवसा आई तो कभी ये कौन है? यही ब्रह्मचारी है, ये भी ब्रह्मचारी, सब ब्रह्मचारी है। स्त्री पुरुष को पता ही नहीं, सब पड़ा होती नारायण नारायण क्या करे क्या
करे। नौकर भाव, सेवक भाव और पूज्य भाव, पूजन भाव, भावों को अच्छा कैसे बनाए? नौकर भाव, सेवक भाव, पूजन भाव, भावों को अच्छा कैसे बना?
अच्छा कैसे?
हाँ,
ऊंचा कैसे बना? नौकर, सेवक और पूजन,
पूरा भाव समझा नहीं क्या मतलब?
आप बताया करते ना, सेवा, कर्म और पूजा। तो भी मैं ये ऊंचा कैसे बना, मैं भावों को अच्छा कैसे, ऊंचे कैसे बना?
सब में भगवान समझने से,
एक तो नौकर भाव है,
सब में पूजा भगवत भाव हो जाए क्या होगा? तो भगवान देव सर्व क्या भाव बढ़ाना पड़ेगा? तो अरे भगवान ही समझ लेंगे तो नीचे भाव आएगा कैसे? आपको ऊंचा भाव बढ़ावा कैसे? हमको नीचे भाव आएगा कैसे? अब बताओ कैसे आएगा? वास्तविकता में सब पूरा आ जाएगा, नीचे भाव आ ही नहीं सकता। बोलो कैसे आएगा बताओ।
महाराज जी, शरीर और इंद्रिय ये तो खैर थोड़ी बस में है जाए, और मन बस में ना हो या के बारे में कोई ऐसी बात बताओ ये मन बस हो।
हे नाथ, हे नाथ, सुनो सुनो बताओ पर। हे प्रभु, हे नाथ, आपको बोलो नहीं, हे प्रभु, ऐसे पुकारते रहो, मिनट मिनट, दो दो मिनट, चार मिनट में पुकारते रहो, हे प्रभु आप में मैं कैसे ले जाऊं, मेरा मन आप कैसे ले जाए, हे नाथ, हे कृपालु, हे प्रभु, ऐसे करो, ये पुकारो, हो जाएगा ठीक, एकदम हो जाएगा ठीक।
महाराज जी, अब जैसे अभी आप बोले कि भाई बुराई के त्याग से भलाई सुख आती है, परंतु जची हुई ये है कि भाई भलाई करने से है ना भलाई आएगी,
तो मैंने कहा ही है।
तो भलाई, अब भलाई करेंगे तो बुराई सुते ही निकल जाएगी, मतलब नहीं है
क्या? कर देख लो निकल गए तो, उम्र खर्च लो निकले तो कभी नहीं निकलेगी।
अब जैसे आपने दो योग बताते हैं ना कि दुख दुख संयोग वियोग, समझ को, तो अब आप कहते हैं कि भाई बुराई का त्याग छोड़ दो तो भलाई आ जाएगी, और भलाई करने लग जाओ तो बुराई निकल जाए, ऐसा नहीं होगा क्या? बुराई
दोनों होता है, पर दोनों में नित्य भलाई है, एक बुराई है, नित्य भलाई है, एक बुराई है, अनित्य भलाई है, एक बुराई है, बताओ। नित्य भलाई है, नित्य बुराई है, अनित्य भलाई है, अनित्य बुराई है, तो त्याग से नित्य चीज रहेगी। आगंतुक का त्याग करो, नित्य से रहेगा ही।
भलाई भलाई हम यदि भर लेंगे अपने जीवन में तो बुराई तो स्वतः निकल जाएगी।
बहुत अच्छी बारी वो करके देखो, हर्ज क्या है, हमारे आग्रह नहीं बिल्कुल। मैंने जो पुस्तकों से पढ़ी है सुनी है वैसे मैं कहता हूँ, आग्रह हमारा ही नहीं किसी संप्रदाय के लिए भी।
विचार सिद्धांत का विचार करने,
विचार कर तो हमारी बात ठीक रहेगी अंत में। वास्तु में बुराई तो पतन करती है, भलाई थोड़े उत्थान करती है। भलाई बुराई क्या है, एक मार्मिक बात बताओ, जितनी भलाई में कमी है उसका नाम ही बुराई है, बुराई वो तत्व नहीं है। भलाई में जो बुराई अंश है उसको बुराई कहते हैं, भलाई कमी का नाम है।
तो अब तो बात महाराज जी हमारे पक्ष सिद्ध हुआ,
बिल्कुल तुम्हारी सिद्ध हो जाए, हमारे तुम्हारा में है ही नहीं, तुम्हारी सिद्ध हो जाए तो मैं थोड़ी ही हमारा।
अब भलाई में कमी का अंश है वही बुराई है,
वही बुराई है। अब बुराई छोड़ो तो क्या रहेगा,
तो
सुन सुन सुन, भलाई की कमी का नाम बुराई है, बुराई छोड़ो तो क्या हो जाएगा।
अच्छा, और यदि भलाई का
भलाई पूरी, भलाई का अंश पूरी भलाई हो जाएगी कि नहीं,
और भलाई पूरी कर दे तो मतलब
बुरा भलाई का, तो बहुत भले भलाई को पूरी कर दो तो पूरी करने में बुराई छोड़नी पड़ेगी भाई, एक ही आएगी बात।
नहीं, भलाई को सर्वांश में करने लग जाए, आकर्षण
करने लग जाएगा तो क्या होगा,
बुराई छूट जाएगी,
बुराई छूट जाएगी। सब तो भलाई बुराई कहाँ टिकेगी, मैं कहूँ बुराई तत्व ही नहीं है, भलाई के कमी का नाम बुराई है, तो भलाई उस दिन बुराई छूट जाएगी। परंतु कमी के अंश की कमी वो है पूरी, तो अंश का त्याग करो पूरी हो जाएगी, बुराई तो अंश है ना।